दीदी भी हम सबके बीच हैं, हमें एक हाथ की ताली से दीदी आपका दिल से स्वागत करते हैं। 50 वर्षों का लंबा तपस्वी जीवन का, समर्पित जीवन का अनुभव इस आत्मा के पास है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी विशेषता आपको बाबा के इस वरदान से मिली हुई है, वो है बाबा के यज्ञ का ऑफिस कार्य। आदि से आप ऑफिस की सेवाएं देती रही, देश और विदेश में भी आपने अपने वरदानी बोल और अनुभवों के द्वारा अनेक ब्राह्मणों के जीवन में उत्साह लाया है, उमंग लाया है, तपस्या और सेवा का बल भरा है, और अनेक मेहमानों को भी आपकी वाणी का लाभ मिला है। स्पोर्ट्स विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही है। पांडव भवन के बाबा के इस कॉम्प्लेक्स की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी भी आप निभा रही है, और आपका विशेष एक रोल है, वो है दिव्य दृष्टि का पार्ट भी ड्रामा में बाबा ने आपको दिया हुआ है। तो ऐसी शशि बहन हम सबके बीच उपस्थित है। चलो हम शशि बहन से हमारे ये 3 दिन की तपस्या की प्रेरणाएं प्राप्त करें। परम आदरणीय शशि बहन,
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे बाप दादा के वरदानी भूमि, बाप दादा और दादियों के विशेष चरित्र भूमि में आज के दिन आप सब नेपाल और दिल्ली से पधारे हुए भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक हाथ की ताली बजाना है ना, ठीक है ना। और आज के दिन तो प्यारे बाप दादा भी आप सबको वतन से देख करके कितना ना हर्षित हो रहे हैं, और साथ साथ आप सबके ऊपर वरदानों की गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी हो रही है। तो जब काठमांडू की बात याद आई तो मैं वो दिन याद कर रही थी जब साकार बाबा नेपाल में जाकर के उन्होंने कदम रखा, और चाहे वो बिजनेस के नाम से हुआ, लेकिन आप सब कितने ना सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी धरनी से आप सब आए हैं जहां साकार बाबा ने पहले से ही आपके लिए वरदानों के बीज बो दिए थे। और दूसरी बात, प्यारे बाबा के टाइम पर ही नेपाल में ही सेवा आरंभ हो गई। और तीसरी बात, आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने आप सबके साथ पास ऐसी बहन को भेजा जिनका नाम है राज बहन, और आप सभी बाबा के होवनहार राज घराने से संबंधित सभी भाई बहने हैं, क्योंकि काठमांडू में तो राजघराना भी फेमस है। और लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चे हैं, होवनहार भविष्य दुनिया के राजे और रानियां हैं, महाराजा और महारानियां हैं। तो इन महाराजा और महारानियों को देखकर बाप दादा और दादियां, एडवांस पार्टी के हमारी दीदी मम्मा दादी और जो भी गए हैं, तो वो कितना ना आज के दिन खुश हो रहे होंगे। और मैं समझती हूँ ये पहला ही मौका है कि आप सबको यहाँ भट्ठी करने का शुभ अवसर मिला है। तो जब भट्ठी करने का ऐसा सुंदर मौका मिला है तो बाबा भी क्या करते हैं, बच्चों को बहुत प्यार से सजाते हैं। और आप सभी जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के श्रेष्ठ कर्म की ही रचना है, बाबा के श्रेष्ठ शुभ संकल्पों की रचना है, क्योंकि बाबा ने ही काठमांडू नेपाल के अंदर पहले ऐसा कदम रख करके श्रेष्ठ कर्म का ऐसा राजाओं महाराजाओं को साक्षात्कार कराया और वहाँ बाबा का जाना भी ड्रामा के अंदर एक ऐसा पार्ट था कि आप सबके लिए पहले से धरनी तैयार कर दे। दूसरा, बाबा हमेशा कहते थे कि भविष्य सतयुग की दुनिया में तो महाराजा महारानी बनेंगे ही, लेकिन उसका छोटा सा उदाहरण भी अभी भी भारत के अंदर और नेपाल के अंदर देख सकते हैं कि राजाओं की रॉयल्टी क्या होती। तो वो रॉयल संस्कार धारण करने के लिए बाबा हम बच्चों को प्रेरणा देते रहे हैं, और साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को ही खुद ही अपने ही शुभ संकल्पों से पैदा किया है। तो आप सब कौन हैं? भाग्यशाली बच्चे हैं। तो बाबा हमेशा मुरली के अंदर कहते हैं, एक है भाग्यशाली बच्चे, दूसरा है सौभाग्यशाली बच्चे, और तीसरा है, बोलो बोलो, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो आप कौन है वो मुझे बताओ। पद्मा पदम भाग्यशाली पक्का? अच्छा, लेकिन इसका अंतर बताएंगे आपको हम। देखो, भाग्यशाली वो बच्चे हैं जैसे बाबा को पहचाना और बाबा से कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, वो पहचान से ही भाग्य का सूर्य उदय हो गया। आप तो वैसे ही भाग्यशाली हो क्योंकि बाबा ने आपको चुन चुन के पता नहीं कहां कहां से निकाल करके इतनी बड़ी फुलवारी इकट्ठी की। फिर सौभाग्यशाली कौन बनते हैं? जब हम बाबा को अपना बना लेते हैं और बनाने के बाद बाबा जो हमको शिक्षाएं देते हैं और बाबा का हाथ पकड़ करके चलते हैं और मुरली का अध्ययन करते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, जीवन के अंदर बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई, इस धारणा पर चलते हैं, तो वो कहलाते हैं सौभाग्यशाली आत्मा। बाबा का हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़े, उसको कहा जाता सुहागिन, सौभाग्यशाली। तो आप सुहागिन आत्मा और सौभाग्यशाली आत्मा। अब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा कौन बनती है? वो है जो बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करते, बाबा के श्रीमत के कदमों पर कदम रखते हुए कदमों की कमाई में से पद्मों की कमाई करते। तो भट्टी में आना ये है पद्मा पदम भाग्यशाली बनना। क्यों भट्टी में आते हैं? ऐसे स्थान पर भट्टी करने का मौका मिलता है जहां पर प्यारे बाबा ने, साकार बाबा ने घंटों घंटों, रात रात, दिन दिन बैठ करके तपस्या की। उसके बाद बाबा के साथ साथ हमारी सब दादियों ने बैठ करके यहाँ तपस्या की है। तो पांडव भवन का कर्ण कर्ण, कोना कोना तपस्या से भरा हुआ। कई भाई बहने जब देर से आते ना तो एक ही बात करते रहते हैं, हम देरी से क्यों आए, हम देर से ज्ञान में क्यों आए, हमने तो बाबा को नहीं देखा, हमने तो मम्मा को नहीं देखा। जिसने बाबा को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करे सारे। अच्छा अच्छा, नहीं देखा ना किसी ने? नहीं है ना, बाबा कहाँ देखा होगा, सुना है ना, बाबा को तो देखा नहीं है। लेकिन बाबा कहते मैं बच्चों के साथ हूँ, ये कैसे कहते हमने बाबा को नहीं देखा? बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा ना, मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ, बच्चों के साथ चलता हूँ, और साथ ही लेकर के जाऊंगा। तो अब बताओ बाबा देखा या नहीं देखा? देखा ना। जब बाबा हाथ पकड़ करके चला रहे हैं तो ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि हमने बाबा को नहीं देखा। हम बाबा की छत्र छाया में बैठे, बाबा की पालना से चल रहे हैं, बाबा ही चला रहा है, बाबा ही अनुभव करा रहा है। तो ये जो बात बाबा हमेशा कहते हैं ना कि मैं बच्चों के साथ हूँ, वो अनुभव करना हो तो पांडव भवन में करो। वो अनुभव इस भट्ठी के अंदर होगा। अभी क्या है, पहले सब भट्टियां यहाँ होती थी, बाबा से मिलते थे, बाबा अव्यक्त हुए तो उसके अव्यक्त होने के बाद दादी ने सबकी भट्टियां रखी। तो भट्टियों के बाद फिर क्या है कि यहाँ पर सब आते थे। फिर बाबा कहते थे एक समय आएगा, इतने बच्चे आएंगे जो आबू रोड से माउंट तक क्यू लगेगी। वो क्यू अभी लगी रहती, आते हैं चारों धाम की यात्रा करते, दौड़ते दौड़ते भक्ति की तरह है ना, भगत आते ना, चक्कर लगाया, चलो चलो चलो, चारों चक्कर लगाया और चल पड़े, ऐसे करते हैं ना, अभी भी ऐसे होता है। तो भगत भी बन जाते हैं और ज्ञानी बच्चे भी बन जाते हैं। अभी तो सारे प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम शांति वन में होता है। तो आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको यहाँ भट्टी करने का मौका मिला। अब इस मौके में सबसे पहली बात, ना इधर देखना ना उधर देखना। साकार बाबा के टाइम पर जब बाबा खड़े होते थे, किसकी बुद्धि इधर नहीं जाती थी, कोई पीछे नहीं देखता था, कोई साइड में नहीं देखता था, बस बाबा और मैं। दूसरा क्या होता था, जब मुरली क्लास चलती थी, कोई भी बच्चे ने उबासी ली, सुस्ती ली, बाबा कहते देखो माया आ गई, माया आ गई, ये देखो माया के पास जा रहा। तो क्लास में न सुस्ती करनी है न उबासी लेनी है। फिर तीसरी बात हम आपको बताएं, जब बाबा मुरली चलाते थे ना, मुरली चलाते हुए बाबा बीच में खड़े होकर के एक एक को दृष्टि देते थे। जब दृष्टि देते थे सब बच्चे वतन में उड़ जाते थे। तो भट्टी में आपको ये सब मौका मिलेगा। आप देखेंगे बाबा जब चारों धाम की यात्रा करेंगे ना, तो हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठे बच्चों को अनुभव कराते, उड़ा देते थे। तो बाबा के साथ कैसे वतन में उड़ना है, कहते ना बाबा, एक दिन बाबा क्या बता रहे थे, आप बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो या बाबा को ब्रह्म लोक जितना प्यार करते हो, बताओ। अब बताओ कितना प्यार करते हो, हैं? आसमान जितना प्यार कौन करता है वो बताओ, एक। और ब्रह्मलोक, अच्छा दो, ब्रह्मलोक जितना प्यार कौन करता है, थोड़े से, बाकी प्यार नहीं करते क्या बाबा को, बताओ। आप दोनों की बात सुनाती हूँ। बाबा ने कहा जो आसमान जितना प्यार करते, आसमान से कितना बेहद है, उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई है। आसमान में क्या जाता है, रॉकेट जाते हैं, विमान जाते हैं। अब रॉकेट में जब रॉकेट उड़ाते हैं, वहां काठमांडू में तो अनुभव है कि एवरेस्ट में जाना हो, छोटे छोटे प्लेन में जाते हैं ना वहां पर प्लेन में बिठाएंगे, सारा एवरेस्ट चक्कर लगाते हैं, तो क्या करते हैं, प्लेन जाएगा ऊंचा, धरती के आकर्षण से दूर। और जो रॉकेट में जाते हैं उनकी ड्रेस अलग होती है, उनका ऑक्सीजन अलग होता है, उनका खाना अलग होता है, धरती के आकर्षण से दूर हो जाते हैं। तो ये भट्टी में आपको बाबा से आसमान जितना प्यार करना, उसके लिए क्या करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सर्व संबंध बाबा के साथ। फिर ड्रेस कौन सी डालोगे बोलो ना। हाँ, फरिश्ता बन के बैठना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फरिश्ते, कोई भी कोई बात याद ना रहे। फिर ऑक्सीजन कौन सी होगी, अरे बाबा के प्यार की ऑक्सीजन में बाकी क्या चाहिए, बाबा है, बाबा शब्द बोलते इतनी खुशी आ जाती, इतनी शक्ति आ, बस मेरा बाबा कहा, क्या शक्ति आती है, क्या खुशी आती है, क्या एनर्जी आती है, बस यही तो ऑक्सीजन, बाबा में ही सब कुछ प्राप्ति है। तो बस उड़ो, भट्टी में उड़ो, आसमान जितना उड़ो, सारे आसमान के अंदर चक्कर लगाओ, सारे सितारों के पास जाओ। आप तो अनुभवी हो, इतनी ऊंचाई पर रहते हो, वहां तो रहते ही हो, इधर भी वही अनुभव करना। अच्छा, फिर ब्रह्म लोक जितना प्यार करना तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे बताओ तो सही। ब्रह्म लोक जितना प्यार करना है तो बिंदु स्वरूप बना, ठीक है ना, वहां तो आत्मा ही है, बस शक्तिशाली आत्मा, बिल्कुल प्योर आत्मा, एक भाव, कोई आवाज नहीं, भट्टी में बिल्कुल भट्टी में बैठ जाओ, बस ब्रह्म लोक में बैठ जाओ, इतना शक्ति आ जाए, इतनी एनर्जी आ जाए, वो एनर्जी सारे विश्व के अंदर फैलती है। तो इसलिए भट्टी में आप सबको बुलाया है कि बाबा के साथ का अनुभव करना, बाबा साथ में है और बाबा आपके सामने आएंगे, देखना बाबा कैसे आएंगे, सुस्ती किया तो बाबा दूसरे को दृष्टि दे देंगे, ये ध्यान रखना, बाबा वरदान दे रहे, इधर उधर देखा ना तो दूसरा वरदान ले जाएगा। तो और दूसरी बात, अपनी झोली ऐसी पक्की रखना, बीच में छेद मत कर देना, जो वरदान मिले कोई दूसरा ले जाए ना, क्यों दूसरा ले, बाबा दे रहे हैं तो वो हमको देखना है। फिर तीसरी बात हम आपको बताएं, एक बात करने कईयों को होता, हम बाबा की पहाड़ी पर जाएं, बाबा की पहाड़ी पर जाएं, इनके गाइड ध्यान देंगे, बाबा की पहाड़ी पर किसी को नहीं जाना, क्यों, आजकल वहां सड़क का काम चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन यहाँ बाबा की पहाड़ी पर तपस्या करनी है। आप जहाँ बैठे ना, ये बाबा की पहाड़ी है, पता है ना, ये पहले बाबा के टाइम पर पहाड़ी थी, और आपने देखा होगा बाबा का एक चित्र ऐसे पहाड़ी पर तपस्या कर रहे, वो कहाँ का, वो यहाँ का है, इसी हॉल का जो है ना, इसी पहाड़ी पर बैठ के बाबा तपस्या करते थे, और बाबा सब दादियों को भाइयों को बुला करके यहाँ पहाड़ी पर सेमिनार करते थे, योग का सेमिनार करते थे। फिर कभी कभी बाबा ना छत पे खड़े हो जाते थे, फिर गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, फिर सब बाबा कहते आओ बच्चे उड़ के आ जाओ, सारे बच्चे दौड़ दौड़ करके ऊपर आ जाते थे। तो जब बाबा के बच्चे बढ़ने लगे, जब बाबा अव्यक्त हुए, तो पहले अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे, फिर बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आते थे। अब बच्चे बढ़ गए तो फिर क्या किया जाए, एक बार बाबा पांडव भवन के आंगन में आए, बाहर स्टेज बना दी, इतने सारे भाई बहने, कोई छत पे बैठा है, कोई इधर बैठा है, पांडव भवन का आंगन तो ऐसे सज गया जैसे फरिश्तों की दुनिया। फिर प्लान किया गया कि दूसरा हॉल बनाया जाए, फिर ये पहाड़ी के ऊपर ये हॉल बनाया गया, और ये अंगूर की बेल जो थी वो काटी गई, जो 24 जून को प्यारी मम्मा के याद में सभी सेंटर्स पर भेजे जाते हैं। तो ये जो हॉल है, ये बाबा की पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी पर बैठ के तपस्या करनी है। योगी कहाँ तपस्या करते हैं, पहाड़ों पर है, तो आप पहाड़ी पर बैठ के करना है। तो बाबा जब आते थे यहाँ, साकार बाबा की विशेष तपस्वी पहाड़ी है। फिर जब हॉल बना तो अव्यक्त बाप दादा यहाँ आते थे, अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे और हम सब पास में बैठे हुए हैं। उस समय कोई सोफा नहीं था, कोई कुर्सी नहीं, एक कुर्सी थी दीदी के लिए, बाकी सब यहाँ बैठे हुए, जैसे बाप और बच्चे बैठते ना, तो ऐसे परिवार की फीलिंग भी आपको आएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये पहाड़ी है, बाहर पहाड़ी पर नहीं जाना है। इनके जो गाइड है ध्यान रखे, कभी कभी क्लास के टाइम कोई कहता चलो पहाड़ी पर, लेकिन वहां पर भालू आता है, भालू खुश हो जाएगा कि इतने इतने पहलवान मिले, हमको क्या चाहिए, और खुश हो जाएगा ना भालू, बस और क्या चाहिए उसको। इसलिए ध्यान रखना, कोई पहाड़ी पर उधर नहीं जाएगा, और आजकल वहां जाते भी नहीं है, रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, जानवर भी आ जाते हैं, और भालू भी सुबह सुबह ढूंढते रहते हैं, गर्मी होती ना बाहर निकलते, उनको खाने को चाहिए, उनको ऐसे योगी मिले तो और क्या चाहिए है? तो इसलिए ध्यान रखना, कोई उधर नहीं जाएगा, सबको यहीं पर ही तपस्या करनी है। तो इसलिए एक तो यहाँ तपस्या कर दें, और दूसरा अपने मोबाइल बंद रखना क्लास के टाइम पर, बाद में कभी ऑन करना तो वो। तीसरी बात, जब पांडव भवन में आते हैं ना, ये काठमांडू वाले सबको प्यारे लगते हैं, सब मिलेंगे आपसे, अच्छा वहाँ का समाचार पूछेंगे, वहाँ की बातें पूछेंगे, वहाँ जो होकर के आए वो आपसे मिलेंगे, लेकिन भट्टी मीन्स उनसे बातें नहीं करनी है, पांडव भवन के आंगन में बैठ के जोर से आवाज नहीं करने का। पांडव भवन के आंगन की विशेषता बताऊं, ये मई जून का महीना था, साकार बाबा सुबह अमृत वेले के बाद पांडव भवन के आंगन में फरिश्ते जैसी वॉक करते थे। उस समय दादियां यहाँ थी, हम भी थे, तो दादियां भी साथ में चलते थे, भाई भी चलते थे। जो पहला ऑफिस है निवय भाई का ऑफिस, वहां पर बाबा खड़े हो जाते थे, सबको दृष्टि दे करके वरदान से भरपूर करते थे। फिर आगे चलते हमारे ऑफिस के बाहर जो थल्ला है ना, पहाड़ी है, बाबा वहां खड़े हो जाते थे। बाबा कहते, बच्चे फरिश्ते बनो, उड़ो, सारे विश्व में चले जाओ। तो थल्ला इतना बड़ा है, वहां पर 50 लोग बैठ जाते हैं। भल बैठो, योग करो, तपस्या करो। वो स्थान ऐसा है, योग के प्रकंपन बाबा के स्नेह की लहरें दिल को छू जाती हैं। वो अनुभव करो, बातें नहीं करने की। फिर बाबा गेट के बाहर जाते थे और बाबा कहते थे, सारे विश्व में चले जाओ। उस समय ना विश्व में कोई सेंटर था, नेपाल एक सेंटर था, सोचते थे यही विश्व है, वे नेपाल को ही विश्व समझ लेते थे हम लोग। लेकिन अब तो विश्व में बहुत सेंटर है। तो बाबा ने जो शांति, ये योग के प्रकंपन फैलाए हैं। अभी हम विदेशों में जाते हैं, कहां कहां पहाड़ों पर एक दो बाबा के बच्चे बैठे हैं, जिससे सितारा चमक रहा है, ज्योति जगी पड़ी है। उन्होंने ना बाबा को देखा है, ना दादियों को देखा, ना बहनों को देखा है, ऐसे आत्मा लाइट और माइट के बैठी हुए। कई स्थानों पर हमारा जाना होता है, तो मुझे हमें वो महावाक्य याद आते हैं कि साकार बाबा ने कैसे वो प्रकंपन फैलाए। तो इसलिए बिल्कुल साइलेंस में, कोई भी समाचार की लेन देन नहीं, कोई भी कारोबार की लेन देन नहीं, जब तक भट्टी में है। फिर बाबा के कमरे में जाओ, बाबा क्या कहता है, बच्चे मैं बैठा। बाबा के प्यार के स्नेह के झूलों में झूलो, बाबा की झोपड़ी में जाओ। दिल की बात है, बाबा जब बैठते थे, बच्चों को पत्र लिखते थे, जो दिल की बात है बाबा से करो, रू रूहान। वो बातें नहीं, बाबा ये है, क्या करूं, ये समस्या है, पति नहीं चलता, घर की समस्या, अरे समस्या तो पूरी होगी बाबा के पास आए। बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, घर से निकलते थे, कहते थे बाबा के पास जाएंगे, बाबा को कहेंगे बाबा ये समस्या है, जब बाबा को देखते थे ना, सब भूल जाते। बाबा कहते, बच्चे कुछ पूछना है पूछो। नहीं बाबा, कुछ नहीं पूछना है। बाबा के बच्चे बोलो, कुछ कहना है कोई बात के। नहीं बाबा, सब समाधान हो गया। फिर बाबा के बच्चे बोलो बोलो। नहीं बाबा, हमको तो सब कुछ मिल गया। तो बाबा के पास जाओ, बैठो, सब मिल जाएगा। समस्या क्या सुनानी है, कोई समस्या है ही नहीं समस्या। शांति स्तंभ में जाओ, बाबा कैसे अंगद की तरह खड़े रहते थे। तो बाबा भी कहते, एक बल एक भरोसे, मैं और मेरा बाबा, बाबा के सिवा कोई नहीं। तो ये सारे अनुभव करने का मौका मिलेगा आपको 4 दिन के अंदर। और बाबा की गोदी में बैठ जाओ, झूलों में झूलो, बाबा के साथ खाओ। और बाबा फिर खातरी भी बहुत करते हैं। बाबा कहते, मेरे लाडले बच्चे आए ना, बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, बाबा बहुत प्यार से उनको ज्ञान योग से तो भरपूर करते, स्थूल में भी खातरी करते थे। फिर बाबा से मिलने जाते थे ना, बाबा कहते, आओ बच्चे टोली खाओ। तो बाबा के पास मिलना मीन्स क्या करना, टोली खाना। हमको याद आता है, कभी कभी बच्चे आते थे ना, आंगन में बाबा खड़े हैं, तो बच्चे कहते थे, बाबा से मिले नहीं। अरे बाबा से अभी तो आंगन में तुम मिला। कहते, कहाँ मिला हूँ, जब तक टोली नहीं खाया तो मिला कहाँ हूँ। दादी के पास मिलते थे ना, आंगन में खड़े हैं, दादी मिलती थी। फिर कहते, अभी दादी से मिलने जाना। क्यों मिलने जाना, अरे टोली खाने जाना है। टोली खाना मीन्स मिलना है ना। अभी भी शांति वन में आते, इतने सब दादियां मिलती हैं, तो टोली खिलाती है ना। तो अभी फिर से आप सबका बाबा के घर, अपने ही घर, अपने ही घर में बाबा के द्वारा, दादियों के द्वारा, सब मधुबन निवासी भाई बहनों के द्वारा आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। अच्छा, सब ठीक है, आराम से हैं, आराम से रहे हैं। अरे यहाँ तो और ज्यादा आराम है, वहां जब यात्रा करने जाते हैं, कहाँ पहाड़ों में इधर बैठे उधर बैठे, इधर बैठे इधर, जगह नहीं है तो जंगल में बैठे, वहां बैठे पहाड़ी चढ़े। यहाँ तो बाबा क्या कहते हैं, मेरी गोदी में बैठे हैं, बाबा की गोदी में बैठे हैं, और बाबा तूने आपको क्या बना दिया हैं? राजा बना दिया। बाबा कहते ये मेरे आ गए होनहार राजा हैं, आ गए हैं रानियां आ गई हैं। पहले बाबा कहते पट राजा पट रानी, अब संगम पर पट राजा पट रानी नहीं, अभी तो बाबा ने पहले से ही बना देते हैं। क्या कहते हैं बाबा, ये मेरे होनहार प्रिंस प्रिंसेस राजकुमार राजकुमारी, और ऐसी सतयुग दुनिया में रास खेलने वाले बच्चे हैं, खुशियों में नाचने वाले हैं, और खुशियों में नाचते रहो और झूमते रहो। ठीक है, सब आराम से हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर भी बाबा कहते कुछ भी हो तो बता सकते हैं। बाबा पूछते थे बच्चों को, बच्चे ठीक हैं? क्या कहें बाबा को, बता दें ठीक है हैं? बता दें हाँ जी, कहना हाँ जी बाबा हम सब ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास।
बाद में यज्ञ सेवा रखना, अभी कुछ नहीं, अभी आप